Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद मनोज जी.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया.
Benchmark domestic equity indices end on a positive note. Sensex gains over 200 points. Nifty settles nearly at 24,900. Finance Minister Nirmala Sitharaman asserts country's economy is resilient amid global volatility. Highlights a need of 8% GDP growth for Viksit Bharat and global crude oil prices rise.
कारोबारी सप्ताह के आखिरी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 200 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,900 के आसपास बंद हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वैश्विक उतार चढ़ाव के बीच लचीली और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है भारतीय अर्थव्यवस्था. कहा, विकसित भारत के लिए GDP वृद्धि दर 8% बनाए रखने की है आवश्यकता. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
आइए चलें शेयर बाजार की ओर और शुरुआत करें अपने घरेलू बाजार से. घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में थोड़ी नरमी देखी गई. आखिरकार सीमित दायरे में कारोबार हुआ और अंत में प्रमुख सूचकांक 0.2% लाभ के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 224 अंक बढ़कर 81,207 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 58 अंक बढ़त के साथ 24,894 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहा. BSE मिड कैप इंडेक्स में लगभग 0.8% की वृद्धि हुई. स्मॉल कैप इंडेक्स 1.1% लाभ के साथ बंद हुआ.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स एंड निफ्टी ओपन्ड ऑन अ नेगेटिव नोट एंड ट्रेडेड रेंज बाउंड फॉर मोस्ट ऑफ द सेशन. बट द इंडेक्स सर्ज्ड ड्यूरिंग द लास्ट आवर ऑफ ट्रेड टू क्लोज ओवर 0.2% हायर. The Sensex gained 224 points to close at 81,207, while Nifty added 58 points to settle at 24,894. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in a positive zone. The mid-cap index increased almost 0.8% and small-cap index added 1.1%.
Sensex pack पर ध्यान दें तो 30 में से 15 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. 3.4% मुनाफे के साथ टाटा स्टील लाभ कमाने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर रही. पावर ग्रिड को 3.1% से अधिक का मुनाफा हुआ. एक्सिस बैंक के शेयर लगभग 2.2% ऊपर उठकर बंद हुए. घाटा उठाने वालों में टेक महिंद्रा को 1.1% और मारुति को भी लगभग 1.1% के आसपास नुकसान हुआ. उधर अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर 0.8% घाटे में रहे.
And among the sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors logged gains. Among the top gainers, metal advanced over 1.8%, industrials rose almost 1.3% and telecommunication added over 1.2%. Among the laggards, realty as well as healthcare dropped 0.1%.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की स्थिति पर ध्यान दें तो एक डॉलर की तुलना में 9 पैसे कमजोर हुआ. 88.78 पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 97.73 पर चल रहा था। विशाल जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कल के बाद आज भी, यानी कह लें कि लगातार दो सत्रों में बाजार ऊपर की ओर उठता नजर आया।
जी बिल्कुल मनोज जी, अच्छी शुरुआत अक्टूबर के महीने की, और ऐसी शुरुआत की उम्मीद भी थी, अपेक्षा भी थी, क्योंकि पिछले लगभग 10 दिन में जिस तरह की गतिविधियां रही हैं आर्थिक फ्रंट पर, उसका असर दिखना लाजमी था। सबसे पहली बात तो एक कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक लुक है मार्केट की, और जिस वजह से हमें रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनका असर जो है तुरंत दिखाई दिया, और कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनका असर आने वाले कुछ दिनों में भी दिखाई देगा। सबसे पहला तो जीएसटी रेट कट, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और जीएसटी रेट कट के नतीजे अगर हम अभी से देखना चाहें तो, हालांकि 22 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उनके मुताबिक कार सेल्स में 45%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 40%, और क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज है उसमें भी लगभग 30% के आसपास की वृद्धि है। यानी कि केवल 10 दिनों में अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो अभी दिवाली बाकी है, अभी कई और त्यौहार बाकी हैं, तो आने वाले समय में इसका नतीजा ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई ने हाल ही में जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो घोषणा की है उसमें जिस तरह का स्टांस रखा है, यानी कि रेट्स को अनचेंज रखा गया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आरबीआई का ये कहना कि वो उम्मीद करते हैं कि ग्रोथ जो होगी, जो जीडीपी ग्रोथ होगी, वो 6.5 की बजाय 6.8 होनी चाहिए, और जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उनको उन्होंने और कम किया है। हालांकि अभी मैं पढ़ रहा था आज आरबीआई के बाद एसबीआई की रिपोर्ट में तो इन्फ्लेशन के आंकड़े और कम होने की उम्मीद जताई गई है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनका सीधा असर बाजार पर हमें देखने को मिलता है, और धीरे धीरे अक्टूबर की अच्छी शुरुआत हुई। मेरा मानना है कि त्योहार में अभी और अच्छी खबरें सुनने,
हाँ, यानी कहे कि पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है।
जी बिल्कुल।
Well, let's take a look at the next story for this evening. Finance Minister Nirmala Sitharaman today highlighted the need for 8% GDP growth to meet the goal of Viksit Bharat. Addressing the inaugural session of the Kautilya Economic Conclave in New Delhi, she asserted that the country's economy is resilient and continues to grow sustainably at its capacity to absorb global shocks. It's strong. She added that the country's growth is firmly anchored in its domestic factors amid global volatility. So very quickly, let me just also bring in our expert here. I think the recent structural reforms proposed by the RBI, out of which internationalization of the rupee is one of those. Do you think this has added to the economy's ability to absorb global shocks?
Well, yes, indeed. And let's not forget, the reason why we are doing so well, our economy is doing so well in comparison to all other economies, and it's the fastest growing economy in the world right now, is because of one simple fact, that is, it's based on our domestic consumptions largely. Our domestic consumption gets a spur through the recent initiatives like the GST rate cut, and of course the overall supply chain management as well within the domestic framework. That is why our fundamentals are strong. There is a strong focus by the government on infra spending. Then the complementary monetary policy being put in place by RBI, all this adds on to the expectations of the GDP growth rising by leaps and bounds. That's why even the RBI rose it to 6.8 from 6.5 for this fiscal. And if the finance minister is saying that we should target the 8% growth rate, there's nothing wrong in that. And I think this is something which is pretty much achievable.
श्रोताओं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौटिल्य कंक्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक परिस्थितियां लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं, ऐसे में वैश्विक संस्थानों को वर्तमान आवश्यकताओं के मद्देनजर सुधार करने की आवश्यकता है।
Honorable Prime Minister has set the two track in motion, one being reaching by 2047 a position where you are able to say that you are a developed country, Viksit Bharat. If that is one of the track, the other track is how do you reach that unless you are Atmanirbhar, unless you are self-reliant.
यहाँ पर विशाल जी हम ये समझना चाहेंगे कि ये कड़वी सच्चाई है अभी दुनिया की कि दुनिया भर में वैश्विक अनिश्चितता हर स्तर पर देखी जा रही है। ऐसे में वित्त मंत्री का ये कहले आह्वान दुनिया भर की संस्थाओं से कि हमें सुधार की आवश्यकता है, किन दिशा में और कहां सुधार की अपेक्षा आपको लग रही है?
देखिए, मैं इसमें आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं और एक प्रधानमंत्री के वक्तव्य की तरफ लेके जाता हूं, जो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि आपदा में अवसर जरूर
जी
और मिलता जरूर है। अब वैश्विक स्तर पर कई तरह की आपदाएं हैं, कई देश हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है कुछ इलाकों में, विश्व के कुछ इलाकों में, चाहे हम मिडल ईस्ट की बात करें, चाहे हम पश्चिम एशिया की, जिसे हम पश्चिम एशिया भी कहते हैं, उसकी तरफ भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां हैं उसकी वजह से भी बहुत उथल पुथल चल रही है, कई तरह की ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही हैं अलग अलग स्तर पर। अब इस सब के दौरान अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से उभर के सामने आ रही है, अपनी जो जो ग्रोथ है उसकी गति में कोई रुकावट मोटे तौर पर नहीं दिख रही है, तो उससे हमें खुश जरूर होना चाहिए
जी।
लेकिन उसके साथ, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि अगर और तेज गति से आगे बढ़ना है और इसमें कोई रुकावट ना पैदा हो, तो कई चीजें हैं जिनमें बदलाव लाने की जरूरत है, जिसमें सरकार की पॉलिसीज को अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक झलक दिखाई देती है। जैसा कि सबसे पहले जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए, तो यानी कि जब जीएसटी रिफॉर्म किए गए तो वो एक बहुत बड़ा मेजर पुश उसे माना जा सकता है, केवल शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि त्योहारों का मौसम है और उसमें फायदा होगा या नतीजे आ रहे हैं, इसे लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। और उसके अलावा सेक्टोरल फोकस क्या होगा, डिफेंस पर, स्पेस पर, नए नए सेक्टर्स क्या होंगे, और सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर हम जब तक नहीं होंगे, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, तब तक वो ग्रोथ रेट जिसकी बात हो रही है 8% 9% वो अचीव करना थोड़ा मुश्किल।
यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम, विराम के बाद हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र, बने रहिए हमारे साथ। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि देश के डेयरी क्षेत्र में पिछले 11 वर्षों में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने ये जानकारी आज हरियाणा के रोहतक आईएमटी परिसर में नवनिर्मित सावर डेयरी प्लांट का उद्घाटन करते हुए दी। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है।
हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है, हम 28-29 में 1000 लाख मेट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। और एक कोऑपरेटिव सेक्टर में जब दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ता है तो इसका मुनाफा सीधा दूध के लिए काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को मिलता है।
श्री शाह ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि संयंत्र के चालू हो जाने से लगभग 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यहां पर हम थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे डेयरी सेक्टर की ओर, और जो एक बड़ा हमने कह लें कि वैश्विक संस्थाओं को बनते हुए देखा है, अपने देश की घरेलू स्तर पर भी कई संस्थाएं डेयरी सेक्टर में मजबूत बनकर उभरी हैं, किस दिशा में प्रधान जो हमारे कह लें सहकारिता मंत्री हैं उनका जो आकलन है कि यह क्षेत्र सबसे अधिक गति से बढ़ रहा है और रोजगार बड़े पैमाने पर सृजित होगा यहाँ?
देखिए, बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि जब कई सालों पहले ये बात कही गई थी कि किसानों की आय को दोगुनी करना की आवश्यकता है, तो वो आय दुगनी केवल फसल के दाम से
जी
उस आय को दुगनी करने में जो एलाइड फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, जिसमें डेयरी सेक्टर एक है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर उसे कोऑपरेटिव तरीके से उसमें आगे बढ़ा जाए तो उसकी एक मिसाल तो हमने देखी है हमारे देश में। अमूल जैसा संस्थान हमारे देश में मौजूद है, जो कि अब वैश्विक पटल पर भी अपनी धाक जमा रहा है। तो इस तरह का फायदा देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में, इस तरह के कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में जो डेयरी सेक्टर है उसमें काम और आगे होगा, तो उसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, किसान बहनों को मिलेगा, किसान भाइयों को मिलेगा और देश की भी तरक्की होगी।
बिल्कुल, यहाँ पर हम एक बार फिर से विराम लेना चाहेंगे। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
And with that, welcome back to Market Mantra. Let's also quickly run you through the next story for this evening. India's foreign exchange reserves decreased by $2.33 billion, reaching over $700.23 billion in the week ending on 26th of September. According to the weekly statistical supplement released by the Reserve Bank of India during the last week, foreign currency assets, a major component of the reserves, dipped by $4.39 billion to over $581.7 billion. Special drawing rights were declined by $90 million, reaching over $18.78 billion. Central Bank's position in the International Monetary Fund was dipped by $89 million to total at $4.67 billion. Conversely, gold reserves advanced by $2.23 billion, totaling to over $95 billion. Vishal, very quickly, any thoughts on this?
Well, this is not a cause of worry because this was something which is bound to happen because of the Trump tariffs, the impact of the Trump tariffs and all that. And the global, economic tussle which is going on seemingly will have some bit of an impact, and that impact might be seen on the Forex reserve part only. But I believe when we look back at these numbers, maybe perhaps 1 month or 2 months down the line, I think the picture will be entirely different.
Absolutely. And as for the next story, Niti Aayog has launched the first paper under its Tax Policy Working Paper series. The paper focuses on improving tax certainty, attracting more foreign investment, bringing more transparency in permanent establishment and profit attribution for foreign investors in India. Addressing the media, Niti Aayog CEO BVR Subramaniam said that the objective of the paper is to introduce an optional presumptive taxation scheme that offers a simpler and more predictable way for foreign companies to pay taxes. Highlighting the key benefits of the policy, he said that instead of undergoing detailed audits, companies can choose to pay tax based on a fixed percentage of their revenue depending on their industry.
बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे कि एक नीति आयोग की नई प्रक्रिया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
जी बिल्कुल, किया जाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा कि जो विदेशी निवेशक भारत में आते हैं या जो विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपना कारोबार जमाना चाहती हैं, उनके लिए जो टैक्स देने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी और सरल होगी, वो थोड़ी सी और आसान होगी, कंप्लायंसेस बढ़ेंगे, लिटिगेशन कम होगा, और अगर लिटिगेशन कम होगा तो जो विदेशी निवेशक हैं उनका विश्वास और बढ़ेगा, उन्हें लगेगा कि इस देश में यानी कि भारत में अगर आप अपना बिजनेस जमाते हैं, यहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं भी पैसा कमा सकते हैं और हमारे देश की तरक्की में भी योगदान कर सकते हैं सीधे तौर पर टैक्स समय पर भर के। तो इसलिए इसमें एक ऑप्शनल स्कीम जो दी गई है वो जिसकी बात कही जा रही है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनके लिए कंप्लायंस और लिटिगेशन में कोई इश्यू ना हो।
बस यहीं पर श्रोताओं, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र, बने रहिए हमारे साथ। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव जो पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ था, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को काफी राहत प्रदान कर रहे हैं। आज हम छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कटौती पर एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए छोटी कारों पर कर की दर 18% से घटाकर 28% कर दी है। इस कदम से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे छोटे शहरों और कस्बों में छोटी कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच जीएसटी परिषद ने 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दर घटाकर 18% कर दी है, जो पहले 28% टैक्स स्लैब का हिस्सा था। एक दुकानदार ने सरकार के इस कदम की ना करते हुए कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका व्यापक लाभ मिल रहा है।
जीएसटी जब से डाउन हुआ है तो बहुत ज्यादा मार्केट में लोगों में उमंग आ गया है। गवर्नमेंट काफी अच्छा पूजा के टाइम पे ऑफर दिया है, तो जो नहीं लेने वाले थे वो भी अब कस्टमर आ रहे हैं।
कर में इस कटौती से न केवल खरीदारों को लाभ होगा बल्कि विनिर्माण और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। नई जीएसटी दरें लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाश समाचार, नई दिल्ली।
Well, Vishal, GST reforms have been the talk of the town, and for good reason, in fact. And what we also see is quite a lot of emphasis on Atmanirbhar Bharat, right? On buying Swadeshi, selling Swadeshi. And it has given an impetus to this campaign as well. Do you think that's also one of the reasons that our economy is becoming quite robust to absorb possible global shocks in the future?
Well, yes, indeed. When you talk about, you know, the focus on buying made in India goods and stuff, that is to do with ensuring that we can further absorb the shocks in the global economic scenario and not be affected by the tailwinds of any other issues like Trump tariff imbroglio, which all of us have seen how it has played down from January onwards. But apart from that, when we look at the GST reforms and its impact, it is pretty much clear it's not just the auto sector. It's various other sectors as well. For example, in the consumer durable segment, there's been an increase in the sales of up to the tune of around 40% in terms of use of credit card. There's been an increase of around 30%. That clearly shows that demand has got that spur which was needed in this particular festive season. And within 10-12 days, an increase of around 45% in the car sales is going to give that much needed fillip to the auto sector.
आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां मिला जुला रुख है. जापान का निकेई 225 सूचकांक 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.4% लाभ के साथ आज बंद हुए. उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंगसिंग 1.6% घाटे में रहा. दक्षिण कोरिया और चीन में सार्वजनिक अवकाश के कारण कारोबार बंद रहा. यूरोपीय जोन में भी मिला जुला रुख समाचार तैयार किए जाने तक था. अंतर्द्वीसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स लगभग 1.3% ऊपर और लंदन का फुटसी 100 0.5% तेजी के साथ चल रहा था, जबकि फ्रांस के कैक 40 में 0.3% की कमी दिख रही थी.
As for the US markets, Wall Street's three major indices closed at record highs on Thursday, driven by support from the technology sector. The tech-heavy Nasdaq Composite Index increased 0.4% to close at 22,844. The Dow Jones Industrial Average added almost 0.2% to end at 46,520. And the S&P 500 remained nearly flat with positive bias to end at 6,715.
बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया यदि हम लेना चाहें, बहुत संक्षिप्त, कैसा दिख रहा वैश्विक कारोबार?
देखिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट है और ये पॉजिटिव सेंटिमेंट इसलिए है क्योंकि सब जगह बातचीत वार्ता का दौर चल रहा है, चाहे वो ट्रेड की बात हो या फिर जो लड़ाइयां चल रही हैं उनको समाप्त करने की बात हो. तो उम्मीद हर जगह बाजारों में यही है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो, इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त वहां भी दिख रही है.
And let's take a look at oil prices today. Global crude oil prices increased today. Brent crude was trading over 0.4%, up at $64.38 per barrel. While WTI crude was also trading around 0.4%, up at $60.73 per barrel when reports last came in. And as for the reports on gold and silver, in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading flat with positive bias to trade at 1,17,640 rupees per 10 grams. And silver was trading more than 0.1%, up at 1,44,790 rupees per kilogram a short while ago.
आइए आपको लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां ताजा समाचार मिलने तक अक्टूबर अनुबंध वाले सोने के मूल्य में 0.2% की तेजी दिख रही थी और ये 1,16,980 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी बिना किसी खास उतार चढ़ाव के 1,44,746 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही थी. सोने की चमक लगातार तेज होती जा रही, आने वाले दिनों में कैसे आसार दिख रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में?
मुझे लगता है कि सोने की चमक और तेज बढ़ेगी. शायद धूप वाला चश्मा पहन के सोने की चमक के ऊपर नजर डालनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह की रैली बनी हुई है सोने की कीमतों में, एक तो वो और दूसरा वैश्विक पटल पर जिस तरह की उठापटक की स्थिति है उसका सीधा असर जो है सोने की कीमतों पर पड़ता है.
बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत विशाल जी धन्यवाद देना चाहेंगे.
धन्यवाद.
Many thanks for joining us, Vishal. And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic equity indices end on a positive note. Sensex gains over 200 points. Nifty settles nearly at 24,900. Finance Minister Nirmala Sitharaman asserts country's economy is resilient amid global volatility. And global crude oil prices rise. And with that, it's a wrap on today's edition of Market Mantra.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।